Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Theater ne pucha, wo natak tha? Bole Maharaj, kya hua? अरे बोले बहुत मैं दुखी हूं, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा दुख का समय आने वाला है। सेठ जी ने पूछा क्या आने वाला है। महात्मा जी ने कहा कि सातवें दिन सेठ जी मरने वाले हैं। अच्छा, ये बात जब सुनी सेठ जी ने तो उस समय सेठ जी की क्या हो गई होगी? अरे पसीना पसीना हो गए। बोले सचमुच सचमुच मरने वाला हूं। बोले हाँ सचमुच, श्रद्धा तो थी महात्मा के ऊपर। और उसके बाद सेठ जी ने पूछा कि मेरे को अब क्या करना चाहिए महाराज। बोले तुम ऑफिस चले जाओ और पैसा गिनो। अरे बोले बोले मरना है, अब क्या करना है? बोले अब तो नहीं नहीं, अब नहीं जाऊंगा, मैं भजन करूंगा। भजन सात दिन बीते, वो सोच रहे थे कि अब मरूं तब मरूं, अब मरूं तब मरूं, मरे नहीं हो। महात्मा जी ने कहा कि भैया तुमने भजन किया इसलिए तुम मरे नहीं, ये तो मर जाते। आपको मालूम हो जाए तो बहुत मुश्किल है। ये चूहा होता है ना, चूहा, आप उसको पिंजरे में बंद कर दीजिए आप, और उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजें उस पिंजरे के अंदर डालिए खाने वाली, वो नहीं खाता है, नहीं खाएगा। वो तो केवल बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो लंबी लंबी सांस लेगा, देखेगा कहां से जाना, कहां से आना, कहां से, वो ढूंढता है, मार्ग ढूंढता है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे भूल जाता है, वो पिंजरा भूल जाता है कि मैं पिंजरे में बंद हूं। जब ये भूल जाता है तब वो खाना शुरू कर देता है। बुद्ध को मालूम पड़ा एक बीमार आदमी को देखकर कि मेरे को भी बीमार होना है। बूढ़े आदमी को देखकर मालूम पड़ा कि मेरे को भी बूढ़ा होना है। मरे हुए आदमी को देखकर उनको मालूम पड़ा कि मेरे को भी मरना है। और उसके बाद क्रांति ने जन्म दिया। यही तो है जानना, यही तो है। आप सत्संग में आते हैं तो आप जानना शुरू करते हैं। परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज, महाराजेश्री यहां मुंबई में आते थे, किसी के यहां जब जाते थे महाराज जी, तो वहां के सेठ जी ने एक बड़ी मजेदार बात पूछी। बोले महाराज जी, आप जब आते हो ना और आपका हम प्रवचन सुनने लगते हैं तो हमको लगता है कि ये संसार दुख रूप है, ये अशाश्वत है, लेकिन आप जब चले जाते हो ना तो हम सब भूल जाते हैं। बोले जब आप चले जाते हैं तो लगता है ओहो हो बहुत बहुत अच्छा, और जब हम आपका प्रवचन सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सचमुच ये संसार दुख रूप है। तो शास्त्र आपके मन में संवेदना को जगाते हैं, शास्त्र आपके मन में सत्य की संवेदना प्रकट करते हैं, यथार्थ का बोध कराते हैं, आपको जनाते हैं, दिखाते हैं। और एक बार आपको मालूम हो जाए केवल, और मालूम होते वहां से आप लौटना शुरू कर देते हैं, मालूम होती आपके जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है। इसलिए वेदांत में आपको कहीं जाना नहीं है, वेदांत में केवल आपको जानना है। विदुहु ते अमृता भवंती, जो लोग जानते हैं वे अमर हो जाते हैं, जो जानते हैं वो अमृतत्व को प्राप्त करते। अपने आप को केवल जानना है, आप हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका परिचय क्या है, आप कौन है, आपको केवल इतना ही तो जानना है, आप कौन है इतना ही तो जानना है। और एक बार आपने जान लिया कि मैं हूं, बस बस। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत महात्मा लोग दिया करते हैं। एक कोई व्यक्ति था और वो तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़ा। उनके साथ एक 5-6 साल का बच्चा था और तीर्थ यात्रा में गए, भगवान के दर्शन उन्होंने किया, और उस भीड़ में उनका वो छोटा बच्चा खो गया। बहुत ढूंढा उन्होंने लेकिन वो बच्चा नहीं मिला, छोटा सा था। और उसके बाद फिर सेठ जी चले गए। बहुत ढूंढा, हर साल आते ढूंढते, लेकिन वो बच्चा उनको नहीं मिला। लेकिन वो बच्चा बच्चा अब वो भीख मांगता बेचारा, भूखा प्यासा, वही मंदिर के बाहर कहीं बैठा रहता, कहीं कुछ मिल जाता खाता, विपन्न, एक भिखारी के वेश में, भिखारी के रूप में जीवन यापन कर रहा था। 10-12 साल हो गए, 15 साल गुजर गए, 15 साल का वो बच्चा करीब 15 साल का हो गया हो, अचानक शेठ जी तीर्थ यात्रा में आए और ठंडी का दिन था, धर्मशाला में रुके हुए थे। किसी ने आके दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, उन्होंने तो देखा कोई 15 साल का बालक है, भिखारी है, और वो कांपता हुआ सेठ जी को बोलता है कि सेठ जी मैं बहुत दुखी हूं, बीमार हूं, बुखार है और मेरे को ठंड लग रहे हैं, थोड़ा आश्रय प्रदान करो। अंधेरा था, मालूम नहीं पड़ा कौन है, और सेठ जी ने उनको दुत्कार दिया, भगा दिया वहां से और दरवाजा बंद कर दिया। वो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार था, वहीं बेचारा पड़ा रहा बाहर। सुबह हुई फिर दरवाजा खोला, उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा वो बेहोश वो बच्चा गिरा पड़ा है वहां, चेहरा खुला था, जैसे शेठ जी ने देखा तो अपने बच्चे की याद आ गई। और जाकर के नजदीक देखा, वो समझ गए ये मेरा बच्चा है, और उसकी उम्र भी इतनी ही रही है, आज मेरे पास होता तो इतना ही बड़ा होता। तुरंत वो अपने पत्नी को ले आए, उनको दिखाया, निश्चित हुआ कि यही है। अब मैं पूछता हूं उसके प्रति दृष्टि क्या बनेगी। अब उसके बाद उस बच्चे को उठा के अंदर ले आए, वैद्य को बुलाए, दवा की, कपड़े चेंज कराए, स्नान कराया, होश आ गया बच्चे को, होश आ गया। और होश आने के बाद बच्चे ने कहा कि मैं जाऊं, अरे बोले मेरे को यहां कहां बैठा दिया, बोले जा रहा हूं मैं। उसको अपने साथ ही याद आ गए, लेकिन नारायण उनके माता पिता ने, शेठ जी ने समझाया, बेटा तुम मेरे बेटे हो। हाँ, शीशा दिखा दिया, देखो देखो ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, और ये मेरा चेहरा, देखो कैसी समानता है, बोलने में भी समानता है, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही तुम्हारा बोलने का लहजा है, जैसे तुम मुस्कुराते हो वो हमारा लहजा है, तुम्हारी आकृति जो है बिल्कुल हमारी है। अब बच्चे को विश्वास हो गया, उसको याद आ गई पुरानी बातें, 5 वर्ष का था, ओहो ये मेरे माता पिता है। अब एक बार उसने जान लिया ये मेरे माता पिता है, वो केवल जाना, वह क्या किया, वह कुछ भी नहीं किया है। अब वो बहुत गौरव के साथ आनंदपूर्ण वो बोलेगा, मैं हूं, ये मेरे पिताजी हैं। अच्छा, अब वो भिखारी दौड़ करके आए और बोले, भैया चलो भीख मांगने का समय हो गया। अब वो क्या बोलेगा, भैया भीख अब मांगना नहीं है, अब आओ तुमको ही हम दे देते हैं। अब वो मांगेगा नहीं, वो बोलेगा आओ हम आपको दे देते, आओ आपको क्या चाहिए। आप उसके तन का भिखारीपन, उसके मन का भिखारीपन, उसके सोच का भिखारीपन सब समाप्त हो जाएगा। अच्छा, वो समाप्त वो धीरे धीरे होगा कि एक साथ होगा, ऐसा तो नहीं कि भाई आज मालूम पड़ा ये हमारे माता पिता है, अब वो पैसा वाला बन गया कि नहीं, अब वो पैसा वाला कितना दिन के बाद बना। अरे तुरंत आपको लॉटरी मालूम पड़ी और उसी समय अरे बन गए आप, बन गए वहां उसी समय नारायण वो बन गया जो पिता की संपत्ति वो बच्चे की संपत्ति बनी। आप उसको कितना भी कोई समझाए कि भैया चलो भीख मांगने के लिए, अब वो नहीं मानेगा, वहां कुछ किया नहीं गया, उसको बहुत कुछ मिला। वो उसका जो मिलना है वो क्रिया सापेक्ष नहीं है, वो ज्ञान सापेक्ष है। वहां क्रिया सापेक्ष तब बनता यदि वो दूसरे रूप में होता, दूसरे काल में होता, दूसरे देश में होता। उसने अपने आप को पाया, अपने आप को समझा, और उसी देश में, उसी काल में, उसी रूप में वहां दूसरा देश नहीं है, वहां दूसरा काल नहीं है और दूसरे के रूप में भी नहीं है। वहां मिलना उसी देश में, उसी काल में है, उसी रूप में है और वहां केवल जानना है, वहां कोई जाना कोई क्रिया नहीं है। इसलिए वेदांत शास्त्र जाने का नाम नहीं है, ये जानने का नाम है। इसलिए यहां पर श्रुति कहती है ये विदुः जो जानते हैं ते अमृता भवन्ति। इसलिए आपका वेदांत जो है आपको वैकुंठ ले जाना नहीं चाहता है। आपने कभी वेदांत में ऐसा सुना क्या कि भैया आप ये काम करो आप स्वर्ग जाओगे, ऐसा कभी सुना? नहीं सुना। आपको यहां प्रेम प्रिय अध्यात्म सत्संग मंडल में कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि आप ये करो तो आपको ब्रह्मलोक मिलेगा। भगवान ने गीताजी में कहा अत्रैव यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। यहैव का अर्थ है इसी शरीर में आपको मुक्त होना है, मुक्त होना है। अच्छा, मुक्त होना है तो कहां जाना है? आपको मोक्ष चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए तो आपको कहां जाना पड़ेगा मोक्ष के लिए? भाई मोक्ष के लिए वहां जाना पड़ेगा जहां बंधन हो। अच्छा, आप मुक्त कहां हो सकते हैं? जहां बंधन है वहां मुक्त होंगे कि जहां बंधन नहीं है वहां मुक्त होंगे? क्यों गिरीश भाई, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि बंधन यहां हो और आप जाके कलकत्ता में मुक्त हो? जहां पर बंधन है वहीं पर मोक्ष है। परम पूज्य महाराज श्री ने कहा कि आपको मोक्ष चाहिए, बोले हाँ। बोले मोक्ष चाहिए तो बंधे किससे पहले मालूम करो। आपको मोक्ष चाहिए तो आप मालूम करो कि हम कहां बंधे हैं। यदि पैर में बंधन है तो मोक्ष पैर में होगा कि हाथ में होगा? वह पैर में रस्सी बंधी है तो आपका मोक्ष पैर से शुरू होगा कि हाथ से शुरू होगा? पैर में रस्सी है ना, तो मोक्ष तो पहले पैर छोड़ो। आदमी बोलेगा अरे भैया पहले पैर छोड़ो हमारे, और हाथ बंधे हुए हो तो? आदमी बोलेगा पहले भैया हाथ छोड़ो हमारे। जहां पर बंधन है मोक्ष का आरंभ वहीं से है। तो बंधन क्या है भाई? आपका जो बंधन है ना, ये बंधन नहीं है, ये बंधा हुआ बंधन नहीं है। ये हमारा जो बंधन है ना, ये वासना का बंधन है। और ये वासना का बंधन आपको हटाना यही है, ये दूसरे जगह पर नहीं है। अभी हम लोग ओंकारेश्वर गए थे तो एक बात मैंने अक्सर महात्माओं से सुनी थी कि गधों को बांधने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं होती है। गधों को बांधने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं होती है। तो बोले उसके पैर को यूं 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 ऐसे कर देते तो बंधा हुआ मालूम पड़ता है। एक बार की बात है, कहते हैं कि एक महात्मा जी आश्रम में रहते थे, एक राहगीर व्यक्ति वहां से गुजरा, 10-15 गधे थे उसके पास, रस्सी थी नहीं, तो उसने सोचा कि मैं गधों को बांधू। महात्मा जी को पूछा कि आपके पास रस्सी है क्या? महात्मा ने कहा कि गधे को बांधने के लिए रस्सी की क्या जरूरत है? अरे अरे मैं बांध देता हूं तुम्हारे गधों, ऐसे उसके पैरों में थोड़ा यूं यूं हाथ घुमाया, बस महात्मा जी ने हाथ घुमाया बंद। दूसरे दिन सुबह हुई और उस आदमी ने गधे को हाका, सारे गधे चले गए लेकिन एक गधा खड़ा का खड़ा। आप उसको डंडा मारे सब कुछ करे लेकिन वो वहीं का वहीं। उस आदमी ने महात्मा जी को पूछा कि महात्मा जी पता नहीं क्या हुआ, मेरा एक गधा उस रास्ते से हट ही नहीं रहा है, जहां खड़ा वहीं है और मैं उसको ले जाना चाहता हूं। महात्मा ने कहा कि भैया उसको छोड़ो तो, तुमने बांधा है उसको तो छोड़ो तो, तभी तो जाएगा। उस आदमी ने कहा कि हमने तो बांधा ही नहीं है, वो तो ऐसा ही है। महात्मा ने कहा कि तुमने झूठ मूठ बांधा है उसको, उसके पैर में हाथ घुमाओ वो अपने आप चल पड़े। और सचमुच ऐसे वो हाथ घुमाया वो चल पड़ा। उसने झूठ मूठ का बांधा और उसने मान लिया कि मैं बंध गया, और उसके बाद फिर महात्मा को झूठ मूठ का उसको खोलना भी पड़ा। तो अभी मैं ओंकारेश्वर में वहां एक कुटिया थी साधु की, वहां 15-20 गधे थे। तो मैंने सोचा कि मैं उसको पूछ तो लूं बात सही है कि नहीं है, क्या सचमुच गधों को बांधने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं होती है, क्या सचमुच ऐसा है क्या। मैंने उसको पूछा कि भैया तुम गधों को बांधते हो? वहां भी बांधते हैं। मैंने कहा कि भैया गधों को बांधने के लिए रस्सी नहीं चाहिए ऐसा हमने सुना है। बोले वो भी सही है। उन्होंने कहा कि हम एक गधे को बांध देते हैं तो सारे गधे समझते कि हम बंध गए। बोले 5-6 गधे हैं तो बोले एक जगह पर ग्रुप में कर लेते हैं, एक को बांध देते हैं, बोले सारे गधे बन जाते हैं, और एक को छोड़ते हैं तो सारे गधे छूट जाते हैं। ऐसे हमारा जो बंधन है ना, ये बंधन क्या है? ये आपका बंधन बाहर का नहीं है, आपका बंधन भीतर का है। हम बोलेंगे भैया चलो वृंदावन, तो आप क्या बोलते हो? महाराज हम बंधे हुए हैं। किससे? अब आप कैसे छूटोगे? आप यही तो है ना, ये मोह का बंधन, आसक्ति का बंधन है, थोड़ा काटना पड़ेगा। और यहीं पर है ये बंधन, यहीं पर इसी देश में है, इसी काल में है, और जहां पर हम है ना उन्हीं पदार्थों में है। और एक बार वो दृष्टि हटी और वैसे आप मुक्त हो गए। इसलिए मुक्त होने के लिए आपको शरीर को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए वेदांत का जो मोक्ष है ना वो इसी शरीर में है। वेदांत का मोक्ष शरीर के छोड़ने के बाद, मरने के बाद मिलता नहीं है। वेदांत में विदेह मुक्ति नहीं होती है, वेदांत में जीवन मुक्ति है। आपकी भगवत गीता का मोक्ष, आपके श्रुतियों का मोक्ष, सनातन धर्म का जो मोक्ष है ना वो विदेह मुक्त नहीं है, वो जीवन मुक्त है। आपको इसी जीवन में मुक्त होना है, वासना से मुक्त होना है। अच्छा आप मुक्त हुए कहां चले गए? स्वर्ग चले गए। बहुत सारे ऐसे लोग वर्णन करते हैं कि आपको मरने के बाद स्वर्ग जाना है। अच्छा तो आप स्वर्ग में गए तो मुक्त हैं कि वहां भी बंधन में है? आप स्वर्ग गए हैं तो वहां का बंधन मेरे को लगता है यहां से भी ज्यादा खतरनाक है। भाई यहां आप पानी पीकर संतुष्ट हैं और वहां पीने को क्या मिलता है? हमने सुना है अमृत मिलता है वहां, और वो अमृत जो है वो मिलता होगा तो अमर होने वाली चीज है, तो क्या वो आप घड़े के घड़े पीने का होगा क्या? भाई अमृत है तो आपको कितना पीना होगा तब आप अमृत अमर हो जाएंगे? अरे आप एक दो चम्मच पी ले और आपको अमर हो जाना चाहिए, वो कोई घड़े से घड़े पीने वाली चीज थोड़ी है। और वहां भी जब जाओगे तो झगड़ा करोगे अमृत के लिए, यहां पानी के लिए झगड़ा है और वहां पर अमृत के लिए। यहां सामान्य स्त्री के लिए झगड़ा है और वहां जाके अप्सराओं के लिए झगड़ा होगा। यहां फूल पत्तियों के लिए झगड़ा करोगे और वहां जाकर के कल्पवृक्ष के लिए झगड़ा करोगे। आप कितने भी लोग लोकांतर में चले जाए और उसका नाम रखो मोक्ष है, लेकिन वो मोक्ष नहीं होगा, वो और गहरा बंधन होगा। इसलिए वेदांत का जो मोक्ष है वो मरने के बाद मिलने वाला मोक्ष नहीं है। ये शरीर छोड़ करके जाकर के मिलने वाला मोक्ष नहीं है। आपने एक वाक्य सुना होगा, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, ऐसा सुना है कि नहीं? मरे बिना आदमी को स्वर्ग नहीं मिलता है। स्वर्ग को जाना है तो आपको मरना होगा। वैकुंठ जाना हो तो डरो मत, वेदांत आपको वेदांत वैकुंठ में जाना हो तो मरे बिना वैकुंठ कैसे जाओगे? भाई आपको भगवान विष्णु के धाम को जाना है, विष्णु लोक जाना है, तो आप मरे बिना नहीं जा सकते। आपको गोलोक जाना है तो आप मरे बिना नहीं जा सकते। आपको किसी भी उत्तम से उत्तम ब्रह्मलोक आदि लोगों में भी जाना है तो आपको मरना होगा। मरे बिना आप लोक लोकांतर नहीं जा सकते, वो विदेह मुक्ति है। और वो बहुत गहरे में वो मुक्ति है ही नहीं है, वो एक बंधन से दूसरे बंधन में ट्रांसफर होना है बस। आप एक बंधन से दूसरे बंधन में चले गए। अब इसे मानोगे एसी का रूम है और थोड़ा ऊपर वाले रूम में जाओगे तो और एसी नहीं है, आपने खर्चा नहीं भरा, और खर्चा नहीं भरने से यदु बाबूजी ने, हमारे मधु बाबूजी ने बोला कि भैया एसी नहीं चलेगी। अब आप बिना एसी वाले रूम में बैठ करके आप कथा सुन रहे हैं और अचानक मालूम पड़ा कि नहीं 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 पैसा भर दिया और एसी चालू कर दो, नहीं तो ओ इस रूम में भेज दो, नीचे वाले कक्ष में आ गए, ऊपर से नीचे आ गए। ऊपर वाले में एसी नहीं थी, थोड़ी धूल थी, थोड़े मच्छर थे, मक्खियां थी, बिनबिना रही थी, और इसमें आने के बाद तो ये मोक्ष है। एक बंधन से दूसरे बंधन में प्रवेश किया, एक की अपेक्षा दूसरा थोड़ा सुखद है, इसलिए आप इस लोक मृत्यु लोक से आप वैकुंठ लोक में चले गए, और वैकुंठ लोक का पुण्य समाप्त होने के बाद क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक का विषय नहीं। इसलिए वेदांत का जो मोक्ष है ना, वो विदेह मोक्ष नहीं है, वेदांत का मोक्ष जीवन मोक्ष है, जीवन मुक्ति है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा अत्रैव इहैव तैर्जितः सर्गो, इसी शरीर में सर्ग 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 माने यही अज्ञान, सर्ग माने वासना, ये कामना जलन घृणा, ये सारी जब मिट जाती हैं तो आदमी को मोक्ष मिल जाता है। अत्रैव इहैव तैर्जितः सर्गो, और जो ज्ञान से मिलने वाला जो मोक्ष है ना, वो हमेशा यही मिलेगा, यही मिलेगा। जो क्रिया से मिलने वाला मोक्ष होगा वो यहां नहीं होगा, वो दूसरी जगह पर होगा। जो क्रिया साध्य है, जो आपको जाके मिलने वाला है, दूसरे देश में जाके मिलने वाला हो, दूसरे काल में जाके मिलने वाला मोक्ष हो, तो वो यहां नहीं होगा, फिर वो वहां होगा, वो बहुत दूर देश में होगा, वो दूसरे काल में होगा, वो दूसरे रूप में होगा। लेकिन वेदांत का जो मोक्ष है ना, वो देश निरपेक्ष, काल निरपेक्ष, वस्तु निरपेक्ष, क्रिया निरपेक्ष है, और वो इसी रूप में है, वो आत्म रूप में है। अपने आप को जानना ही वेदांत का मोक्ष है। उस बच्चे ने क्या किया, जान लिया बस। उस बच्चे ने जान लिया कि मैं अमुक आदमी का बेटा हूं, वहां हुआ कुछ, उसका जानना जानना था, वो क्रिया साध्य नहीं था, उसका अपने आप में होना वो केवल जानना था, वहां कोई क्रिया नहीं थी, वहां तो केवल ज्ञान था। इसलिए आपका वेदांत जो है आपको जानने में ले जाना चाहते हैं, ज्ञान की क्रांति लाना चाहते हैं। इसलिए यहां पर श्रुति ने कहा अमृतास्ते भवंती ये विदुः, जो जानते हैं इस आत्म तत्व को, शरीर अतिरिक्त आत्म तत्व को, शरीर अतिरिक्त ब्रह्म तत्व को, वो लोग अमृत हो जाते हैं। उसका जो मृत्यु के साथ जो संबंध है ना, वो टूट जाता है। ये मृत्यु का संबंध तो आपके तन के साथ है, मृत्यु का संबंध आपके आत्मा के साथ नहीं है। ये मरने वाली जो चीज है, ये मरना जो धर्म है, ये आपके शरीर के शरीर का है, कौन मरेगा? ये बात तो आपको भी मालूम है, ये प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है, ये मरण धर्मा, ये शरीर है। और यदि आपने शरीर समझा ये मैं शरीर हूं तो आप मरोगे, और आप समझेंगे मैं आत्मा हूं तो नहीं मरेंगे। यही तो अमृत होने का अर्थ है, ये अमृत होना नहीं है, अमृत समझना है। यहां कहते अमृता भवंती, या अमृता भवंती माने अमृत हो जाते हैं। अरे अमृत तो पहले ही है, वो तो केवल समझ रहे थे मैं मरने वाला हूं, वो तो समझ रहे थे। एक छोटा सा दृष्टांत दे देता हूं मैं। हमारे अपने आश्रम में स्वामी श्री गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज हैं, वो बहुत अच्छा एक दृष्टांत दिया करते हैं। एक कोई व्यक्ति था अंग्रेज, और उसको भ्रम हो गया। उस आदमी का नाम था मिस्टर जॉर्ज, और उसको भ्रम हो गया कि मैं कीड़ा हूं। हो सकता है, आदमी के दिमाग का क्या भरोसा। और हमारी जो समझ होती है ना, उसी समझ के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। आप अपने आप को पुरुष समझते तो पुरुष की तरह कपड़े पहनते हैं, और अचानक आपको मालूम पड़े कि मैं स्त्री हूं तो अनिल बैठे बैठे अपने ऐसी को मालूम पड़ा कि मैं स्त्री हूं, मैं दिमाग का क्या भरोसा है। कुछ वायरस आ गया, वायरस आ जाता है तो आपके लैपटॉप को कंप्यूटर को वो गड़बड़ कर देता है, वायरस वो फाइलें उल्टी पुल्टी कर देता है। और ऐसे कोई वायरस आ गया दिमाग का और घूम गया दिमाग और मालूम पड़ा कि मैं स्त्री हूं। मेरे को लगता है कि आप जब दोबारा यहां सत्संग में आओगे तो ये पहन के नहीं आओगे। आप बिल्कुल साड़ी उड़ी पहन के आओगे हो अब तो, और चलोगे तो बहुत मुश्किल है। फिर आप पुरुषों में नहीं बैठोगे, आप इधर इस लाइन में बैठोगे आगे, क्योंकि जैसी समझ होती है ना वैसी आदमी क्रियाएं करता है। अब मिस्टर जॉन को मालूम पड़ा कि मैं कीड़ा हूं, अब वो रेंगने लगता कीड़े की तरह, वो कीड़े की सारी संवेदना उसके अंदर थी। और सबसे ज्यादा वो डरता था, किससे? मुर्गी से डरता था, कीड़ा है ना वो। और कीड़ा तो मुर्गियों से डरता है जो चुगने वाली चीज बनी। बहुत परेशान हो गए लोग, उनको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने समझाया कि तुम मिस्टर जॉन हो, तुम कीड़ा नहीं हो। महीनों महीनों समझा दिया, समझ गया। उसने बोला कि सर हम समझ गए, डॉक्टर साहब समझ गया कि मैं मिस्टर जॉन हूं, मैं कीड़ा नहीं हूं, और मेरी छुट्टी कर दीजिए। डॉक्टर ने छुट्टी कर दी और मिस्टर जॉन हॉस्पिटल से बाहर निकले। डॉक्टर भी बड़ा प्रसन्न था। और दो मिनट के बाद बाहर वो मरीज आया, बाहर से अंदर आया मिस्टर जॉन। और मिस्टर जॉन ने पूछा, डॉक्टर मैं तो मिस्टर जॉन हूं और मैं समझ गया हूं, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में है, और वो ये है कि मैं घर जा रहा हूं, रास्ते में बहुत मुर्गियां हैं। और मेरे को उस समय क्या करना चाहिए? सामने मुर्गी आ जाए, यदि मैं मुर्गियों के बीच में घिरूं तो मेरे को क्या करना चाहिए? मिस्टर जॉन ने कहा, तुमको अभी कहीं जाना ही नहीं है, अभी तुमको अभी और 6 महीने के लिए मेरे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। आपने एक बात जान लिया नारायण, जान लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, शरीर से अलग हूं, उसके बाद आपके जीवन में सारी अमृतत्व की प्राप्ति होगी। फिर आप अपने आप में अनुभव करेंगे मैं अमर हूं। और यदि आप शरीर समझेंगे तो फिर आपको कौन रोकेगा मरने से? यदि आप अपने को शरीर समझते हैं तो आपको मरने से कोई नहीं रोक सकता है। और यदि आप अपने को आत्मा समझते हैं तो आपको दुनिया में कोई मार नहीं। ओम नारायण।